परमात्मा महावीर स्वामी आदि अनंत शंकरों के चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन, परम उपकारी गुरु वर्यों के चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन। परम पिता चरम शासन पति सर्वज्ञ विकास ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी आज जगत के जीवों को ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इस चार जो मोक्ष मार्ग की भूमिका को आगे ले जाने में और मोक्ष तक पहुंचाने में सामर्थ्य रखते हैं ऐसे मार्ग की देशना देते हैं। और आज तक ये देशना अनंत काल से हमारे सामने भी आई है। ऐसा नहीं हुआ है कि आज पहली बार हम जिनवाणी को ये मनुष्य भोग में ही प्राप्त हुए हैं। अनंत काल में अनंत बार इस जिनवाणी हमें प्राप्त भी हुई थी, लेकिन हमारी भूमिका हमारी योग्यता और हमारी पात्रता प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए ये वाणी को पाके भी वाणी को हमने सफल करना नहीं कर पाए। तो इस तरह से आज भी हमारे पास जो अवसर आया है तो अगर हमारी पात्रता प्रकट नहीं हुई तो आज का मनुष्य भोग का अवसर भी वैसे ही निकल जाएगा। तो ये हमारा सद्भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज जिन आज्ञा के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, जब हम सोचेंगे तो प्रश्न अवश्य उठेंगे। प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक सिर्फ जिज्ञासा कुतूहल वृत्ति कि ये क्या है ये जान ले। जैसे हम कहीं एग्जीबिशन देखने जाते हैं, आपको पता चलता है कि नगर में कोई जगह पे इस जगह पे एक एग्जीबिशन लगा है या जो म्यूजियम खुल गया है, तो वहाँ हम जाते हैं तो हमारी वजह क्या होती है, सिर्फ वहाँ जाए और उसको देख के चले आए, इसको प्रेक्षक कहे जाते हैं। प्रेक्षक माने देखने वाला, स्पेक्टेक्टर सिर्फ देखना, उससे कुछ लेना नहीं है कुछ पाना नहीं है। तो इस तरह से हमारा संसार का भी अनंत काल हर जगह कुछ देखा कुछ सुना और उसको देखने की वजह जानने की वजह सिर्फ हमारी जिज्ञासा थी, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं हो गया। परमात्मा का समर्थन जब लगता है तो उसमें कई जीव ऐसे ही आते हैं, देखो ये त्रिग्रह की रचना है, अशोक वृक्ष है, जैसे इंद्रजाल लिखी है ऐसा माहौल है। तो उस तरह से कई बार हम जिज्ञासा वश कुतूहल वश समर्थन से भी वैसे ही जाते बाहर निकल गए, इससे आगे जाते हैं तो कुछ सामान को जरूर खरीदते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ बिक्री हो रही है सामान मिलता हो, लेकिन वो सामान लाके हमें क्या करना है। तो कभी हम इसलिए लेते हैं कि दूसरों को देने में काम आएगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी जगह जब हम लेने को गए तब हमारा उद्देश्य था कि दिखने में कैसा लगेगा, एप्रोप्रिएट रहेगा कि नहीं, वो हमारे लिए क्या है ऐसी कोई भावना उसमें नहीं रहती। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से लाना है और दूसरी जगह बेच देना है। तो कई बार हमने ऐसा ही किया है कि कुछ ज्ञान किया तो मन को लगा कि अब हम सबके साथ बातें कर सकेंगे, चर्चा होगी तो हमारा भी अभिप्राय रहेगा, हमारा भी योगदान रहेगा। तो इससे हमने कुछ पाया नहीं। इससे आप मिठाई बनाते हो, हलवा वगैरह बनाते हो तो अंदर चमचा घुमाते हो, काली छोटे वो घुमाते हो तो वो तो पूरा समय उसमें घूमता रहता है लेकिन उसको उसका टेस्ट मिलता है नहीं मिलेगा। इतनी देर तक अंदर घूमने पर भी वो अपनी जड़ता की वजह से कुछ टेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो एक उंगली भर के भी चख ले तो उसका टेस्ट मिल जाता है। उसी तरह हमने भी कई जगह से ज्ञान तो किया लेकिन ज्ञान की वजह बस उसमें घूमना, उसको घूम के कभी कुछ उठाया तो भी वो दूसरों को लेना था, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया और आगे जाके कुछ सीखा तो इससे हमने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की। क्या क्या कि हमें भी कुछ आता है, सब लोग हमें पूछेंगे, हमको सब कुछ पता है। जैसा ज्ञान पाने के बाद पर्सनालिटी को डेवलप किया लेकिन उसका अंदर में उतरना भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने कई जन्म ऐसे ही ज्ञान तो किया, चाहना बहुत, सोचा भी, लेकिन उसकी वजह उसका लक्ष्य आत्मा के लिए इसको जान के इसको सीख के अपने जीवन में कुछ सुधार करना है ऐसा नहीं था। तो ऐसे कार्यों को निष्फल कहा जाता है। ऐसे कोई चीज निष्फल नहीं होती लेकिन जो इंसान हमारा है, जो लक्ष्य हमारा है वहाँ तक न पहुँचाए तब तक का हर प्रयत्न निष्फल कहा जाता है। आप किसको मिलने गए और वहाँ पहुँचने के बाद आपने इतना लंबा रास्ता तय किया, इतना घंटा ड्राइव किया, एड्रेस भी पक्का लिया, वो भी सही निकला और वहाँ गए तो दरवाजा लॉक था, तो आप क्या कहेंगे? मेरा धक्का निष्फल गया। आप जाते तो आए थे, वहाँ तक पहुँच भी पाए, एड्रेस भी मिला और एड्रेस सही भी था, वहाँ पहुँच कर भी आए, फिर भी सत्य को क्या कहेंगे? निष्फल कहेंगे ना। और दूसरी बात, आप गए भी, दरवाजा भी खुला था और अंदर घरवाले भी थे, आपको बुलाया भी गया, आदर सत्कार भी हुआ और बिठाया भी गया, लेकिन आपको जो काम निपटाना था वो एक आदमी है वही मिलता, मौजूद नहीं था, तो भी आप घर जाकर क्या बोलेंगे? मेरा सत्कार निष्फल गया। तो इतना करने पर, वहाँ तक पहुँचने पर और वहाँ घर में जाकर देखने पर भी आपका काम सफल नहीं कहा जाता है। लेकिन तीसरी बार जब गए तो उस समय व्यक्ति घर में भी था लेकिन गप्पे सप्पे लगे, खाना पीना भी हुआ, मस्ती मजाक भी हुआ, आनंद प्रमोद भी हुआ, फिर भी काम नहीं बना, तब भी क्या कहेंगे? हमारा सत्ता निष्फल गया। और चौथी बार जब गए तो उस समय और कुछ न था, न खाना पीना, न मस्ती मजाक, न आनंद प्रमोद, सिर्फ व्यक्ति जो बैठी थी उनसे आप गए और 10 मिनट में काम बन गया, तो आप क्या कहेंगे? आज मेरा दफ्तर सफल हुआ। इस तरह हमारा जन्म होता रहा, हम कुछ करते रहे, कभी लक्ष्य तक जाने का मन में आया भी होगा लेकिन वहाँ गए तो दरवाजा बंद था, जैसे हम नर्क में गए, सीमेंट में गए तो वहाँ जो पाना है उसके लिए दरवाजे खुले नहीं होते हैं पूर्ण रूप से, और वहाँ से कुछ अच्छे काम करके आगे बढ़े और देवलोक में गए तो वहाँ आनंद प्रमोद भी मिल गया, सुख सद्गुण अनुकूलता भी मिल गई, लेकिन कुछ काम नहीं बना। अभी जब एक धक्का आया वो है मनुष्य लोग का कि वहाँ एक धर्म तो मिला, एक कार्य भी होने वाला है, ऐसी संभावना भी मिली, लेकिन फिर भी वहाँ जाके जिससे जो बात करनी थी वो सिर्फ नहीं थी और कुछ बातें थी, तो भी क्या हो गया? हमारा परिभ्रमण का लीडर का भी निष्फल गया। आखिर में जब एक बार गए मनुष्य भाव में आए और ऐसी व्यक्ति से मुलाकात के साथ करनी थी, वो व्यक्ति भी मिली और थोड़ी ही देर में उनसे बात हो गई और अपना काम बन गया। तो अभी ये हमारा चौथा स्टेज आ गया है जब मनुष्य जन्म में आए हैं, परमात्मा महावीर स्वामी का शासन हमें मिला है। महागुरु जैसे निर्ग्रंथ मुनिवर भी हमारे लिए गुरु के रूप में मौजूद है और हम श्रोता ही है, हम सुनने को भी जाते हैं। तो अभी उसमें से क्या सुनना, कितना करना, क्या कर लेना ताकि हमारा धक्का सफल हो जाए। तो ज्ञान कहते हैं कि ज्ञानस्य फलम वीरति, जो भी करना है, जो भी ज्ञान करे, जो भी तप करे, जो भी त्याग करे, जो भी क्रिया करे, ये सब का आखिरी फल हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में मोक्ष के प्रति का जो भाव है वो बलवान बने, मोक्ष के प्रति जाना है वो कार्य में तीव्रता आए, जिसको कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग। तो ऐसे संवेग को बढ़ाने वाला, संवेग माने मोक्ष में जाने की जल्दी, और निर्वेद का मतलब होता है संसार के प्रति आकर्षण जो था, संसार के प्रति जो मोह था वो टूट जाना, और इसके स्वभाव जान के हमारा मन ऊपर से संसार के ऊपर से उठ जाना, इसको निर्वेद कहते हैं, संवेद निर्वेद। ये दो चीज जब तक न बने तब तक हमारा ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं कहा जाता। सम्यक माने यथार्थ। प्रश्न है हमारा संसार में रहता सम्यक तो मेरवा हमारे शो करो, संसार में रहता तो संसार में रहते हुए कोई बाधा नहीं है, चारों चीज संसार में होते है, पूरा संसार संसार है। साधु भी संसार को छोड़ के निकले है लेकिन है तो संसार में। लेकिन इसके प्रश्न के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जिसने पूछा है वो ये कहना चाहते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में है, तो ये गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन पाने के लिए क्या करना। तो ज्ञानियों ने कहा है कि सम्यक दर्शन शब्द जो है ना उसमें गृहस्थ आश्रम से कोई विरोध नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुणस्थान चौथा रहता है, और चौथा सम्यक दर्शन का जो स्वरूप देने वाला चौथा गुणस्थान है वो अविरति का ही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो गृहस्था वास में ही है, गृहस्था वास में तो है, एक व्रत का भी उसने धारण नहीं किया है, संकल्प नहीं लिया है, एक व्रत के बारे में भी प्रत्याख्यान वगैरह उसने किए नहीं, फिर भी उसके ज्ञान में स्पष्टता है, पूरी पूरी समझ है कि संसार कैसा है। हम सम्यक दर्शन में जो तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान में अपने ही ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, वही सम्यक दृष्टि परोक्ष रूप से उसके ज्ञान से ध्यान से श्रद्धा के रूप में मानते हैं। तो केवल का ज्ञान और सम्यक दृष्टि का ज्ञान उसमें फर्क इतना ही है कि केवली उसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वो खुद देखते हैं, और सम्यक दृष्टि जो है वो देख नहीं सकते है, ज्ञान में अपने आप से नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा ने जो बताया उसका इतना ही स्वीकार कर लेते जिसका जितना स्वीकार केवली ने अपने ज्ञान में देख के किया है, जैसे जहर है। तो ज्ञानी को ज्ञान में दिखाई देता है कि किसी ने जहर उठाया, जहर खाया और जहर अंदर गया और कैसे परिणत हुआ, उसने कैसे डैमेज करना शुरू किया धीरे धीरे करके, पूरी सिस्टम को, बॉडी की पूरी सिस्टम को कैसे खत्म कर दिया। एक ज्ञानी को शरीर ऊपर है, ऊपर स्किन है और अंदर में ब्लड में जाके ग्रीस ने कैसा प्रभाव दिया, वो आंख का विषय नहीं है, वो कान का भी विषय नहीं है, वो सोचने का विषय भी नहीं है, वो क्या विषय है, वो अनुभव होता है कि शरीर में कुछ हो रहा है। तो हम दूसरे का ये परिभ्रमण अंदर जैसे हो रहा है वो देख नहीं सकते, लेकिन केवली देखते हैं, तो केवली देखने के बाद वो कैसा मानते है खुद को दिखाई देता है, तो मानेंगे कि ऐसे 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 हुआ, लेकिन हम कैसे मानेंगे इसको? तो जो हमें कहने वाला है वो प्रत्यक्ष देख के कह रहा है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। फिर से एक अंधा है, चला जा रहा है और रास्ते में उसको ठोकर लगती, तो नीचे वो पत्थर पड़ा था, वो टकरा गया और किसी देखने वाले से पूछा कि ये मेरी टकराहट हुई वो चीज क्या है, मैं जिससे टकराया ये क्या है? तो अंधा देख नहीं सकता, लेकिन देखता हुआ उसे बताता है ये पत्थर है और जो तू टकराया वो पत्थर है। तो अंधे को न दिखते हुए भी मानना पड़ेगा कि नहीं ये पत्थर है, मानेगा कि नहीं? अगर नहीं मानेगा तो उसको क्या मिलेगा? तो उसकी शंका दूसरे प्रश्न के रूप में बाहर आएगी, तीसरी आएगी, चौथा आएगा, आखिर में तो खुद को ज्ञान है ही, खुद को आंख है ही, तो उसको किसी की बात से भरोसा ही करना पड़ेगा। तो वो उसको छू के देख सकता है, तो थोड़ा बहुत समझा तो दो हमें ये पत्थर कैसा होता है। तो यानी आँख से देखने वाला उसको कहेगा छू के देख, स्पर्श करेगा तो उसको ऐसे कुछ ठोस चीज नजर में आएगी, तो मानेगा कि पत्थर ठोस होता है। फिर आगे गया, एक खम्भे से टकरा है, फिर पूछा ये क्या है? तो उसने कहा कि खम्भा है, तो उसका भी स्पर्श कर सकता है। तो उसने स्पर्श करके देखा कि पत्थर से कुछ अलग है, लेकिन टकरा जाए तो चोट लग सकती। और फिर थोड़ा आगे गया, फिर उसने सूरज की किरणें का अनुभव किया, एकदम से सुख कड़ी तेज चल रही थी और वो चलने लगा। तो उसने देखने वाले से पूछा ये क्या है? बोला ये सूरज की गर्मी है। तो फिर दिखाओ मुझे, देखने वाला दिखा देगा? वो बोला मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ दिखाओ। वो बोलेगा मैं दिखा नहीं सकता, तुम देख नहीं सकता, मैं कहता हूँ ये सूरज है, उसकी किरण है, वो गर्म है, उसका स्पर्श तुझे जला रहा है। तभी इस सूरज का न देख सकने वाला अंधा वो सूरज को कैसे मानेगा? पहले उसकी जिज्ञासा थी कि हमको उसका कुछ अनुभव कराओ, तो पत्थराज ने दे दिया, खम्भा का स्पर्श करा दिया। और अभी उसकी वही इच्छा है कि जो आपने दो चीज के बारे में बताया वैसे इसका भी अनुभव कराओ। तो क्या कहेंगे देखने वाले? क्या कहेगा? ये नहीं करा सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की भी बात नहीं, तू चाहे कितना भी चाहे लेकिन तेरे पास आंख ही नहीं है, तो तू उसका विश्वास कर। अभी देखो अंधे के पास विश्वास करने के सिवा और कोई रास्ता है? उसी तरह जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक हमारा भरोसा सिर्फ देखने वाले के ऊपर होना चाहिए। कई लोग सोचते कहते हैं, कई लोग अनुमान करके कहते हैं, लेकिन देखने वाला स्वयं देख के बताता है। और बताने वाला भी ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ स्वार्थ हो, बताए हमारा माल अपना प्रोडक्ट है आप किसके सामने रखो और उसको बोल सकते हो कि मेरी प्रोडक्ट से बदतर दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कर सकते हैं? तो मानने वाले को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए? वो माने तो भी नुकसान और न माने तो इस तरह से नुकसान। तो उसको ये सोचना है कि मुझे कहने वाला कौन है। बात तो माननी है, बात तो माननी ही पड़ेगी, जो अपने पास की बात नहीं है, लेकिन बात मानने से पहले ये भी तो सोचना पड़ेगा कि बात बताने वाला, ये बात बताने वाला अगर अगर निस्वार्थ नहीं होगा तो उसमें उसका स्वार्थ छूट जाएगा। निस्वार्थ तो है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं, सीधा कुछ मिल नहीं जाएगा, लेकिन उसमें कुछ पूर्वग्रह प्रेजिडेंस आग्रह दुराग्रह कुछ हो सकते है कि नहीं? जैसे कभी कोई लोग बोले पुराना सब सही नया सब गलत, कोई कहेगा नया सब सही पुराना सब गलत, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है तो इसकी बात मानो, देखने वाला भी है फिर भी उसकी बात मानो कि जो ग्रहों से बंधनों से मुक्त हो। तो ये सोचते सोचते बात यहाँ तक आएगी कि जो राग द्वेष से मुक्त हो, किसके पास कोई बचा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कुछ बचा नहीं है, पाने के लिए कुछ, मन के अंदर एक भी भ्रम नहीं है, मन के अंदर कुछ करने के लिए जो स्वयं सिद्ध है, जो कृतार्थ है, करने वाला हर कार्य जिनका हो चुका है, स्वयं मोक्ष मार्ग में केवली होने के बाद निर्वाण तो ठीक से नक्की है, तभी उसको अपनी संप्रदाय की भी जरूरत नहीं है, उसके आगे पीछे उसका कोई अनुयायी हो, उसका कोई शिष्य हो, उसका नाम रखे, ऐसी कोई भावना जिसका कार्य ही सिद्ध हो गया है, जिसका मिशन खत्म हो गया है, खुद के लिए एक मिशन था, मुक्ति हो जाए, तो निर्वाण पाने के लिए जो कृत निश्चय थे अभी कृतार्थ हो गए, क्या हो गए, कृतार्थ हो गए। तो इस तरह से हमारा भरोसा वर्तमान में सम्यक दर्शन पाने के लिए एक ही रहेगा कि हम उनकी शरण में जाइए जो जो खुद वहाँ पहुँच चुके हैं, ये पहला, और पहुँचने के बाद वो जो बता रहे उसमें वो न्यूट्रल है, उसका अंगत रूप से कोई स्वार्थ नहीं है, और वो खुद वहाँ से एक कार्य सिद्ध होने के बाद यहाँ उसकी कुछ आगे पीछे रखने वाली बात को भी नहीं मानने वाले है। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, जिसके ज्ञान में जो भी आया इसका स्वरूप उसने जगत के सामने जो रखा, संसार में रहते हुए हम सब समय दर्शन पाने के लिए वर्तमान में इतना कर सकते हैं कि हमारे लिए सिद्ध होने के लिए, सुखी बनने के लिए, परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, कोई भी शब्द से बोलो, लेकिन हमारा जीवन सफल करने के लिए हमें किसका अनुसरण करना, तो भगवान तीर्थंकर जो हो, वितराग जो हो, केवली जो हो, सर्वज्ञ जो हो, उसके बताए रास्ते पे चलना, इसका नाम है प्रपत्ति यानी शरणागति। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा, फिर ज्ञान करना, और ज्ञान करने के बाद भी उसकी कसौटी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, तो सुवर्ण के लिए कहा जाता है कि आप किसी को गहना लेके जाओ और उसको बता दो कि ये मेरी बैंगल है, वो मुझे बेचनी है, आप मुझे इसके पैसे दो, तो सोने क्या करेगा बैंगल को, पहले तो तराशेगा, वो कसौटी के पत्थर से पीसेगा, उसकी आंख में अनुभव है, उसके पास अनुभव का ज्ञान है कि ऐसी रेखा, ऐसा प्रकाश देने वाली रेखा कौन सी धातु की हो सकती है, तो पहली नजर में वो परख लेगा ये सोना है, तो क्या आपकी बैंगल ली और पूरा का पैसा, पूरा पैसा वैसे दे देगा, तो क्या करेगा, उसको काटेगा, बिकॉज उसकी ऊपर की सपाटी जो है उसका सरफेस जो जहाँ से घुसा गया वो तो सोने का है, लेकिन अंदर कुछ भी हो सकता है, अंदर कुछ भी मिलावट हो सकती है, मतलब बैंगल के अंदर तांबे का तार भी पिरोया दिया जाता है, इसको पोकर बोलते थे, पोकर माने सोलिड में अंदर में आग अलग का तार है, तो उसने काटा, वो जहाँ से काटा है वो बीच वाला भाग, वो वहाँ से उसने घिसा तो वहाँ से भी सोना निकला, तो भी अगर उसको डाउट रहा तो क्या करेगा, सोने को आग में डालेगा, उसका टच गैस निकालेगा, पूरा का पूरा सोना पिघल जाएगा और उसमें से कोई धातु अलग नहीं होगी, तब जाके उसको वो सोना मानेंगे। इस तरह ज्ञान को समय दर्शन पाने वाले को इतनी बड़ी सावधानी रखनी है कि ऊपर के प्रिंसिपल सबके समान दिखेंगे, सब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिचय, इस सब बातें को हर धर्म का स्वीकार है, लेकिन जब अंदर से काटो तो पता चलेगा कि अहिंसा कितनी सीमित है। इससे पहले दिन बताया था कि कोई सिर्फ मनुष्य की अहिंसा को मानते हैं, कोई सिर्फ पशुओं की अहिंसा को मानते हैं, कोई सिर्फ अपने ही पक्ष की अहिंसा को मानते हैं, लेकिन जिसमें जीव मात्र की अहिंसा ऐसा ज्ञान देने वाला जो मार्ग है उसको हम अगर कर्म कहे उसको हम मोक्ष का मार्ग कहे तो हमें आगे जाके कभी इससे यू टर्न लेना नहीं पड़ेगा। इस तरह से अग्नि का पहले क्या कष्ट, फिर छेद, फिर ताप, मारवाड़ी में कैसे कष्ट छेद ताप, तीन रूप से सोने को परखा जाता है, उसी तरह ज्ञान को परखा जाता है। इस तरह की कसौटी के बाद जो हमारे सामने ज्ञान का मार्ग आया और इसमें परमात्मा ने हमें हेज में और उपाधि, हेज माने छोड़ने लायक और उपाधि माने स्वीकारने लायक जो चीज बताई उसका नव तत्व के रूप में हमें ज्ञान मिला है। इन तत्वों का पूर्ण रूप से अगर हम स्वीकार करके उसका अभ्यास करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि ये संसार में करने लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है और जानने लायक क्या है। इस तरह से अगर हम संक्षिप्त में कहना चाहें तो नव तत्व का जो स्वरूप ज्ञानियों ने बताया है उसको सही रूप में समझना यही व्यवहार संकृत का पहला सोपान है। इसके बाद जाके निश्चित सम्यक्त्व में जाए तो तम संवेद निर्वेद अनुकंपा और आस्था ये पांच चीजों को जहाँ प्रकट करते हैं वैसे मार्ग को सम्यक दर्शन कहा जाता है। ये तात्विक रूप से बात हुई, अगर व्यवहार रूप से उसका उत्तर दिया जाए तो इतना है कि सम्यक्त्व पाने के लिए हृदय में अनुकंपा का, संवेदना का, हर जीव की जो चेतना है वो एक समान है। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचारे, तुझे जो प्रतिकूल है, तुझे जो पसंद नहीं है वो संसार के किसी भी जीव को पसंद नहीं, तो ऐसा व्यवहार तू दूसरों के प्रति नहीं कर, ऐसी माने एक करुणा की भावना है। ये प्राथमिक लक्षण है। संसार में रहते रहते हम प्राथमिकता से तीन वचन का स्वीकार करके आत्मा में सर्व जीवों के प्रति समान दृष्टि करके आत्मा के कल्याण के मार्ग पर जाएंगे तो संसार में जब अंधेरा होता है तभी तो दिया जलाने की जरूरत होती है। आप किसी रूम में गए तो वहाँ आपको स्विच ढूंढनी पड़ेगी, लाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो स्विच अंधेरे में ढूंढोगे कि प्रकाश में ढूंढोगे, लाइट आएगी तब आपको स्विच मिलेगी, लेकिन अंधेरा तो होगा ही जब स्विच करोगे, पहला कदम रखोगे तो हम संसार में ही होंगे। संसार से मुक्त होके तो संकेत पाना नहीं है, तो संसार में संकेत पाने के लिए पहले तो आत्मा हूँ, दिखने वाला संसार और मैं वो कुछ अलग बात है, शरीर और आत्मा एक नहीं है। ऐसा ज्ञान प्रारंभ में जब होगा धीरे धीरे करके ये मार्ग से चलने से सम्यक्त्व पूर्ण रूप से हम पा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है निश्चय और व्यवहार क्या है। तो निश्चय और व्यवहार ये है कि जो चीज हम कर रहे थे वो दिखने वाली चीज है, गाड़िया सब जाने पूरा पूरा गाड़ी का प्रवाह एक रोड पे जा रहा है, लेकिन ये व्यवहार रूप से है, लेकिन हर एक के मन में कहाँ पहुँचना है और क्यों पहुँचना है वो बात तो अपने मन की बात है, किसको पता नहीं। आप कहाँ जा रहे हो ये तो गाड़ी देखने से भी पता चलेगा, लेकिन आप क्यों जा रहे हो वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो आपके अंदर की बात है। तो उसी तरह से एक थाली में भोजन करने के लिए चार लोग बैठे और चारों को एक ही भोजन परोसा गया है, चारों एक भोजन कर रहे हैं, तो व्यवहार से तो सबको एक सा पाप लगेगा, बराबर भोजन वही का वही और खा भी जा रहे चारों रह गए, समय भी इतना है, क्वांटिटी भी इतनी है, सब कुछ है, तो व्यवहार से कहा जाएगा ये सबको एक समान पाप लगना चाहिए। लेकिन खाने वाला उसमें से एक जो है वो आसक्त है, वो अपनी मन चाही थी अंदर से उठा उठा के खा रहा है, उसका चाहता भी है कि वो चीज मेरे ही पास आए, तो उसका नजर किधर रहेगा, आप अपने आप ही देखो, आपके पास फ्रूट का काटा हुआ समारा हुआ प्लेट आएगा और आपको सबको एक पोस्ट दिया जाएगा, आप सब उसमें से फल उठा के खाओगे, लेकिन तब एक भी फल उठाएंगे अगर पांच का फल है टूटे तो उसमें से आप कौन सा फल उठाओगे? तो फल तो सबने खाया, लेकिन एक जो खा रहा है पूरी आसक्ति से मन चाह जो अच्छे से अच्छा हो वो उठा के खाता है, दूसरा है वो ऐसे खाता है कि जो आग डाला और जो आ गया वो खा लिया, और तीसरे ने तो ऐसे देखा भी नहीं कि मैंने उठाया वो कौन सा है, ऐसे ही खा लिया, और चौथे ने इतना कम खाया, इतना कम प्यार से खाया और इतना ही खाया कि खाली सबको लगे कि वो खा रहा है, तो उसमें चारों को एक सा पाप लगेगा। क्यों? खाया तो सबने है, लेकिन खाने की वजह हर एक की अलग अलग थी। तो कहा जाता है एक ही कार्य करने में कोई नर्क में चला जाता है, कोई डिजेंट में चला जाता है, कोई देव में चला जाता है, कोई मनुष्य में चला जाता है। तो नियमित रूप से जो दिखाई देता है वो व्यवहार कहा जाता है, और अंदर में जो भाव है, अंदर में जो लक्ष्य है वो निश्चय कहा जाता है। तो दिखने वाला व्यवहार एक सा हो लेकिन अंदर से फलने वाला जो प्रभाव हो वो एक सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है इसलिए कि खाने वाले सबके भाव समान हो। मदिनाथ भगवान के साथ उनके जो छह मित्र थे जो साधु बन के साथ में थे, सबका काम था मोक्ष में जाने के लिए तप करना, और सब समान तप कर रहे थे। तो मल्लीनाथ जी के मन में अगले जन्म की बात है, उसके मन में आ गया कि सब समान तप करते रहेंगे तो सबके साथ में मोक्ष जाएंगे, लेकिन मुझे तो जल्दी जाना है। तो वो क्या करते थे, सबने सुबह एकासना कक्षा, और जब दोपहर होती थी और सब कोचिंग के लिए जाने को पूछते थे तो क्या कहते थे, अच्छा तो मेरा एकासना लेकिन अभी पेट में भूख नहीं है, या तो कुछ गड़बड़ है, तो आज मुझे खाना नहीं खाना है। तो उसने कर लिया उपवास और उन लोगों ने किया एकासना। तो क्या मल्लीनाथ भगवान को उपवास का फल ज्यादा मिलेगा? उनके एकासने से वो सरलता से करते थे, सबने साथ में तय किया है कि हम सब साथ में आए हैं, साथ में साधना करेंगे और साथ में मोक्ष ले जाएंगे। तो उसको मोक्ष की जल्दी ये तो सुख था, लेकिन व्यवहार जो था उसके साथ जो उसने काम लिया वो अपने भाव से प्रेरित वो माया थी, क्या था वो छल था। तो उसकी वजह से उसका उपवास होने के बावजूद भी उनका कर्म छुटने की बजाय और बढ़ता गया। तो जो दिखता है वो व्यवहार होता है, जो नहीं दिखता लेकिन उसका जो इंटेंशन है उसको निश्चय कहते हैं। तो ये व्यवहार होने से हर जगह हम लगा सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि संयमित जीवन बिना पश्चात के कितना व्यर्थ है, जैसे एक बार भोजन करता हूँ या चमिकन नहीं खाता लेकिन पछाण नहीं है, तो संयमित जीवन के बिना पछाण कितना व्यर्थ है। तो संयमित जीवन का मतलब यहाँ मैं समझती हूँ कि पछाण लेना किया है, तो पछाण नहीं किया और संयम रखा माने के भोजन नहीं किया तो उसका फल तो मिलता है कि हमने पाप नहीं किया। तो जितना पाप आज नहीं खाया, आज जमीन कर माने कंदमूल, तो कंदमूल नहीं खाया तो उसका पाप नहीं बनता, लेकिन कंदमूल न खाने से अन्य कंदमूल के जीवों को हमने अगर अभिदान दे दिया होता कि आज मैं कंदमूल का भोजन नहीं करूं, इस तरह से पछाण लेने से हमने आगे जब शुरुआत हुई तो बताया था कि जब पछाण लिया जाता है तो जिस चीज का पछाण लिया उन सबको अभय दान मिल जाता है। जैसे आप कल हमारे यहाँ स्वामी वास्तव्य है, सबको बताया गया है कि पूरे संघ को निमंत्रित किया जाता है और सबको भी बताया है कि आप आरएसवीपी कर लेना, तो जितने दिनों में आना है वो अगर आरएसवीपी ना करे ना तो चलेगा, लेकिन जिनको नहीं आना है वो अगर आरएसवीपी ना करे तो उसका हिसाब से संघ के सदस्य के रूप में उनके नाम से भोजन बनाया जाएगा। आपको करीब 100 लोग को आप गिनते हो कि हमारे स्वामी का कल्याण है। बराबर सुनो, आर्य स्थिति करे એમાં આવવાનું પણ કહેવાય, અને આર્ય સ્થિતિમાં તમે સફર સંઘ હોય ને બેન, ત્યારે આર્ય સ્થિતિમાં નાશ કહેવાની જરૂર, આવવાની જરૂર તો હવે આપણે કહી છે કે આપણે ભોજન બના, પેલા તો સંઘ માટે ભોજન બનતું, આખા સંઘ માટે બને, પણ એમાં કેટલા નહીં આવે, આ તો આપણો આશય શું છે જાણવાનો, કે કોણ નથી આવવાનું એની આપણને ખબર પડે, આપણે તો સફર સંઘ ને આમંત્રણ આપીશું। જો તમારી એક અપેક્ષા એ સાચું છે બેન, તમે જે કહેવા માંગો છો તમારા ઇન્ટેન્શન થી સાચું છે, પણ જયારે તમે સકળ સંઘને આમંત્રણ આપ્યું તો તમારો અંદાજ એવો હોય કે 100 માણસ આવશે, પણ કેટલા નથી આવવાના એનું કર્તવ્ય પેલા બને છે કે હું નહીં આવી શકું એટલે એના નામનું ભોજન ન બને। જેને આવવું છે એને કહેવું, એ કેવું જોઈએ એ આપણે ક્યાં વ્યવસ્થા છે। બાકી સામાન્ય રીતે સંઘના ભોજનમાં આમંત્રણ આવ્યા પછી હું આવીશ એ કહેવાની જરૂર ન હોય, પણ મારે ન આવવું હોય તો મારું ભોજન વ્યર્થ ન થાય, મારું ભોજન વેસ્ટ ન થાય, એ અહીંયા તો આવવાના ન હોય એવા વધારે હોય છે। શું છે, 100 માંથી 25 આવવાના હોય તો 25 જણા છીએ કે અમે આવશું તો 25 નું જ ભોજન બને, બાકી બીજે બધે શું બનતું હોય કે તમે જેટલાને આમંત્રણ આપ્યું હોય એ આવશે એમ માનીને રસોઈ જાય। તો જો તમે ના ન પાડો, અગર આપ ના નહીં બોલો કે મેં નહીં આવવા, તો આપકે નામ સે ભોજન બન જાયેગા, ફિર આપ ખાઓ યા ના ખાઓ આપકા નિમિત્ત બન ગયા, તો બનાને કા પાપ આપકે સર પર આયેગા, આપ બનાને કા પાપ આપકે સર પર આયેગા। તો આજ હમ ખા નહીં રહે હૈ ચમીકંદ કો, યાને કે કમ બોલ કો, લેકિન હમને એસા ભી નહીં બોલા હૈ કે ચમીકંદ વાલે સભી જીવો કો મેં અભય દાન દેતા હું, આજ મેં આપકો હાનિ કરને વાલા નહીં હું। જેસે હમને ઉસ દિન ઉદાહરણ દિયા થા કે આપકે સામને કોઈ ગન લેકે આ જાય, और यहाँ बैठे 50 लोगों के सामने गन पकड़ के कोई खड़ा है तो 50 जीव भयभीत रहेंगे। अगर उसको एक को ही मारने की भावना है, उसका मन पक्का है कि 50 में से मैं सिर्फ एक को मारूंगा, फिर भी अगर वो एक को अलग करके न बोले कि एक इसके सिवा आपको मैं हानि नहीं करने वाला हूँ, तब तक 50 लोग भयभीत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 50 से भयभीत रहे के ना रहेंगे, તો એને પાપ લાગે જ ના લાગે, એ કહી શકે કે મારે મારવા નથી તો મને પાપ શું કામ લાગે। તો એનો આન્સર એ છે કે અગર આપકો નહીં મારના હૈ, આપને બોલા નહીં કે મેં મારૂંગા, લેકિન આપકા વ્યવહાર એસા હૈ, યુ આર ઓપન, આપકે હાથને ગન હૈ, આપ ગુસ્સે નહીં હો, આપ મારને કે હિસાબ સે યહાં ખડે હો, તો હર કોઈ ભયભીત રહેંગે કે શાયદ હમે ભી માર દે। તો ઇસ તરફ સે સંસાર કે જીવ હમારી ઓર સે ભયભીત હૈ, અગર એસા નહીં હોતા તો હમ એક દૂસરો સે ડરતે ક્યું, પૂરે સંસાર મેં કિસી ને કિસી કો અભયદાન નહીં દિયા હૈ, અગર હમને પ્રત્યાખ્યાન નહીં દિયા હોતા ઓર હમ દોપહર તક ઉપવાસ રખે ઓર શામ તક મેં સર પકડા ગયા તો શામ કો હમ ચાય પી લે, ક્યોંકિ હમને ક્યાં નહીં કિયા હૈ કે આજ મેં નહીં ખાઉં એસા કમિટમેન્ટ નહીં દિયા હૈ। તો વ્યવહાર કે માર્ગ મેં ભગવાન કા માર્ગ યે બતાતા હૈ કે જિસકો જો નહીં કરના હૈ उसके लिए उसको मैं श्योर करने के लिए, क्या हम ओपन है, लेकिन हमें ओपन नहीं रहना है, वी आर नॉट अवेलेबल कि उनके लिए हम भयजनक बन जाए, इसलिए जिसको भी पूर्ण रूप से अभयदाता बनना है या तो त्याग का फल पाना है, संसार के जीवों को भय से मुक्त करना है, तो उसका पूर्ण रूप से कर्तव्य ये बनेगा कि जब भी नहीं लेना है कुछ, नहीं यूज करना है तो उसके प्रत्याख्यान ले लेने चाहिए। तो निष्फल नहीं जाता, हम संयमित जीवन के बिना कुछ भी कर भी ले, मतलब पछाण लिए बगैर कुछ करे तो उसका फल इतना मिलेगा कि आज हमने इसको नहीं खाया तो उतना पुण्य मिलेगा, लेकिन अभयदान का फल उसमें नहीं जाएगा। और वंदना नमस्कार मंत्र सीखो तो आदि विधि सहित नहीं किया तो दोष लगेगा, या परिस्थितियों के अनुसार कर सकते हैं, जैसे सोते बैठे। इसमें दो बातें, जो करना है आपको उसकी विधि अगर आप जानते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप विधि पूर्वक करो, क्योंकि करने का उद्देश्य क्या है, हमारे प्रमाद को छोड़ना है, परमात्मा के प्रति हमारा जो बहुमान है, हमारा जो आदर है, उसको अभिव्यक्त करना है। तो जैसे आप किसके घर में गए और वो सोफे पे पांव लटका के बैठे और ऐसे ही पैर लगाते दबाते बैठे और वो आपसे छोटे भी है और आप उनसे कई बड़े बुजुर्ग हो और उसके मन में आपके प्रति आदर है, उसका अभिव्यक्ति के लिए वो उठ के आपको क्या करेंगे, बताएंगे, कहेंगे कि नहीं। अगर उसके मन में आदर है और ये तरीका होता है, एक व्यवहार होता है कि कोई भी आए तो उसको आदर के साथ बुलाओ। लेकिन वही पर व्यक्ति अगर बीमार है और सोया पड़ा उससे उठा नहीं जाता है और आप उसको ही देखने गए हो तो ये जरूरी नहीं बनता कि उस वक्त को उठ कर बुलाए। तो शक्ति होने पर भी, इरादा होने पर भी सिर्फ प्रमाद से या तो उपेक्षा से आप व्यवहार न करो तो धर्म के क्रिया में दोष कहा जाता है, उसको दोष कहा जाता है। अगर आपसे बनता नहीं, आप मजबूर हो, आप कर नहीं पाते हो तो कैसे भी सोते बैठते कैसे भी कर सकते हो। लेकिन व्यवहार उसमें एक फ्रेम बना दी जाती है कि समाज को कुछ विधि विधान करना है तो किस तरह से किया जाए, लेकिन हमने उसको ऐसा जड़ बना दिया, ऐसा न करो तो आप महापापना करते हो, ऐसा न करो तो आपको पाप लग जाएगा, ऐसा न करो तो आपके लिए तो कोई छुटकारा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चा है, छोटा है, माँ की गोद में बैठा है, वो अपने पैर से पेट उछालता है और माँ को लात भी मार देता है, मारता है कि नहीं, तो माँ उसके पैर को चुम लेती, पैर लगाया, लात लगाई तो भी पैर को चुम लिया। और वही बेटा बड़ा होके अगर माँ को लात मारे तो कैसा लगेगा? तो लात गलत है, लेकिन किस वजह से है, किस लेवल से है और क्यों है, इसी तरह से धर्म में समझना कि ऐसे जैसे परमात्मा जी के सामने हम बैठे तो हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे मुंह से निकलते हैं कि हमारी पीठ उनके प्रति न हो। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप गलती से वैसे के वैसे निकल गए तो आपने भगवान की कोई बड़ी आराधना कर दी। व्यवहार ये है कि आपको उसका आदर करने के लिए आप पीछे मुड़ के जाओ। लेकिन कोई बच्चा है गलती से वैसे का वैसा निकल गया तो बड़े चिल्ला उठते, अरे अरे समझता नहीं, कैसा आनंद कर दिया, उसको तो पाप लग गया। ये बात नहीं, इरादा पक्का। धर्म में निश्चय बड़ा मायना रखता है, लेकिन व्यवहार को शुद्ध रखना पड़ता है। एक परंपरा है, एक व्यवहार है, समाज में एक दूसरे देख देख के उसका अनुसरण करते हो तो व्यवहार और निश्चय को समझ के व्यवहार तब करो जब उसका निश्चय में भाव है तो पूरा का पूरा पालने की कोशिश करो। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी को आजकल सब उपासना, पहले करता था उपासना, सब नीचे बैठ के करते और भोजन को भी थाली को भी एक अपने पाटला ऊपर रखता और मोटे जाते पाटलो स्थिर। हमें आगे व्यवस्था ही आई गई थी कि मोटा भरना जमीन पर बेसिक दर्द करता, नीना ऑपरेशन कर कहीं ने दुखावा शुरू कर दिया। हमें अपने आग्रह रखिए कि बे सुनो के एकासनों को जमीन पर बेसी ले खाए तो एकासन छोड़ू के जमीन पर बैठा विना पर एकासन करू बे माँ मुख्यता बोलो जमीन से मुख्य क्या है एकासन है। तो उसी तरह समझो, हमको असाधना नहीं करनी है, हमको विधि का भंग नहीं करना है, हमको इसके कोई ऐतराज भी नहीं है कि इसे नहीं है। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता जाता है, बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो उसका कपड़ा बड़ा कर दिया जाता है कि बच्चे को काट काट के छोटा ही छोटा रखा जाता है। बच्चा महत्व का है कि कपड़ा महत्व का है, क्या करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर इसका पहला ऐसे मैंने पढ़ा था, धर्म का अधिकार, और इसमें ये प्रश्न उसने पूछा था कि न जाने कार्मिकों को क्या हो गया था, फ्रेम जो बना दी उसने धर्म रूपी बच्चे को बिछाए रखना चाहते, फ्रेम तोड़नी नहीं है। लेकिन जो व्यवहार रूप से उसका इंटेंशन समझ के कुछ करना है तो उसका बच्चा जिंदा रहना चाहिए। कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बच्चे को छोटे को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, व्यवहार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो बन रहा है उसमें क्या है कि फ्रेम को पकड़ के रखा है। अगर गलती से उसके सील दे रहे बस खाना छोड़ देना पड़ेगा, एक अपना दूर जाएगा, वो 3 घंटा देखे देखे फिर आसन पे खाया तो भी एक आसन कहा जाएगा, और एक आसन थोड़ा सा हिल गया तो 2 बार खाया जाएगा। मतलब व्यवहार को जरूर पकड़ो लेकिन निश्चय को ज्यादा महत्व दो। अभी कुछ कारण ना
हो
आपकी मर्जी, एक आसना सुनो 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 बेन सुनो, एक आसना में एक आसन में ऐसा नियम नहीं लिखा है कि कैसे देखना, ऐसा लिखा है कि एक बार भोजन करना, तो फिर देखने की व्यवस्था इतनी महत्व की नहीं है जितनी एक टाइम भोजन करने का इंटेंट है, एक टाइम खाने का पक्का रखना चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन अगर भोजन की व्यवस्था में कुछ नहीं बन पाया तो उसमें इतनी नुकसान नहीं है जितना नुकसान इस छोड़ने में। પ્રતિક્રમણ છે તો છે આખા 6 આવશ્યક માં પેલો આવશ્યક સામાય સામાય છે 24 અંકો 2 વંદન 3 પ્રતિક્રમણ 4 કાયોત્તર 5 અને પ્રત્યાખ્યાન 6 તેમાં મુખ્ય આવશ્યક વંદિતુ તરીકે છે। એટલે કદાચ આપણી પાસે એટલો સમય ન હોય સંજોગ ન હોય જો પ્રમાદ ને વસ્ત કરીએ તો નુકસાન આપણને છે। પ્રમાદ ને કારણે આળસ ને કારણે આપણે શોધક કરીએ તો આપણે ત્યાં કહેવત હતી કે તમે હાથ ને ચોખ્ખો કરો તો હાથ સાફ થાય, પગ ને ચોખ્ખો તો અર્ધ સ્નાન કરો તો અર્ધું શરીર સાફ થાય, ને પૂર્ણ સ્નાન કરો તો પૂર્ણ સ્નાન થાય। તો 6 આવશ્યક કરો તો 6 આવશ્યક થાય, પણ કદાચ કશું એ ના બને તો તમે વંદિતુ નો પાઠ કરો તેમાં આલોચના થઈ જાય। વંદિતુ માં અતિચારો ની આલોચના છે એટલે કશું એ ના, આજે બેન તમે ઉતાવળ માં છો, ભોજન કરવાનો સમય નથી, પ્લેટ લેવાનો સમય નથી, પછી પ્લેટ ધોવાનો સમય નથી, એ વખતે તમે કાર માં બેસી જાઓ, ચેક બોક્સ માં લઈને સાથે લઈને પણ પેટ ભરી લો છો નહીં, એટલે થાળી મુખ્ય, પ્લેટ કે થાળી, ટેબલ અને દેખવાનું એ મુખ્ય કે ભોજન મુખ્ય, શરીરમાં ભોજન અનિવાર્ય છે, પ્લેટ અનિવાર્ય નથી, પણ પ્લેટ સાથે ટેબલ ઉપર બેસીને કે નીચે પાટલા ઉપર બેસીને શાંતિથી તમે ભોજન કરો એ ઉત્તમ છે, પણ આ મધ્યમ કહેવાય। શું કહેવાય? હંમેશા દરેકમાં વિચાર છે ગુડ બેટર બેસ્ટ, તો બેસ્ટ છે કે બધું હોય, પણ બેટર એ છે કે મુખ્ય વસ્તુ થાય, મુખ્ય વસ્તુ થાય ને ગૌણ ન થાય। અને છગન એ છે કે માત્ર તમે એને યાદ રાખો કે આજ મારાથી આ થયું નથી, મારે આ કરવા યોગ્ય હતું, એટલે આપણે કર્તવ્ય ના ભૂલીએ, એટલું પણ કરી શકાય તેનાથી આગળ વધ્યા છે। તેમ ગયે વખતે આપણે કીધું હતું કે ઈચ્છામી ઠામી કાવસર્ગ જોમી દેવત્યો અયારો કવો કાયો વાયો, આ જે પાઠ છે એ આખું પ્રતિક્રમણ નું સૂત્ર છે, એમાં બધું જ આવી ગયું છે। એટલે જયારે પ્રતિક્રમણ ન જ થયું હોય તો ઓછામાં ઓછું આ સૂત્ર બોલીને ત્યાર પછી જ આપણે બેડમાં જવું, સવારે ઉઠીને પણ એક વખત પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ, પણ ન થયું તો નૌકાથી પાડતા પહેલા એક પાઠ અવશ્ય બોલી લેવો, એ મિનિ પ્રતિક્રમણ છે। શું છે? મિનિ પ્રતિક્રમણ છે એટલે તમને પ્રતિક્રમણ માંથી કાઢીને બતાવું છું. વારંવાર આપણે બોલીએ છીએ ઈચ્છા ની સામી આપણી બુક માં છે, તમને કાઢીને આપણે જુદો બતાવશું. એટલે પ્રતિક્રમણ એક સૂત્ર થી પણ થઈ શકે, પણ જો આટલો શોર્ટકટ બતાવી ને તો પાંચમા આવેલા જીવ ને આટલું જ જોઈતું છે. અને જે અપવાદ માર્ગ કહેવાય, અપવાદ માર્ગ એટલે શું? ડાયવર્ઝન કાસ્ટ થતી હોય ને એ હંમેશા મેઇન રોડ ઉપર જાય, પણ જયારે મેઇન રોડ છૂટી ગયો ત્યારે ડાયવર્ઝન માં જવું પડે. પણ ડાયવર્ઝન માં ગયા પછી એનો ઉદય થયો હોય કે પાછું મેઇન રોડ ઉપર મેઇન રોડ પકડી ગયો. પણ આપણે એવા જીવ છીએ ડાયવર્ઝન માં બેઠા. એટલે પાંચમાના જીવને ભગવાન પણ સોચતા હતા કે આ બધાને સેમ કરીને બાંધવા. એટલે એને મોટર ટાઈપ કમ્પાર્ટમેન્ટ ની જેમ કેટલીક વસ્તુમાં આજે ઘણા કહે કે ભાઈ મારે ઉપવાસ માં અમને ખાલી ચા પીવાની છૂટ આપો તો અમે ઉપવાસ કરી દઈએ. તો ભગવાન કે તને ચા પીવાની, કોફી પીવાની, દૂધ પીવાની બધી છૂટ, પણ એને તું ઉપવાસ નહીં કહેતો. ધારણા પ્રસ્થાન કે છે, બરાબર છે ને? ઉપવાસ થયો તારે કે આજે ચા કે કોફી સિવાય મારે તમામ ભોજ્ય પદાર્થો ખાવા પીવાના પદાર્થો નથી. પણ જો તમે એને ઉપવાસ ના માપશો તો પછી ચા નું આઈસ્ક્રીમ બની જશે કે ભાઈ ઠંડો કરી દીધો, એમાં સીધી ગયો સીધે મમરી ગયો, એટલે આઈસ્ક્રીમ ખાઈ દીધો ચા. એટલે બધું ધીમે ધીમે આવી જશે. એટલે પાંચમા જીવ માટે આપણે લોકો વખરો ને જળ છીએ, એટલે આપણે વ્યવહાર ને યુક્તિ બરાબર સમજવાના છે. એટલે તમારે કાર્પેટ ઉપર બેસવું પડે તો એ વખતે આપણો અહેસાસ હોય ત્યાં કાર્પેટ નીચે અને જીવ હશે એની મારાથી વિરાજ સાથે. જો એક વાત સમજી લો, હું વેરી ક્લિયર કે આપણી પાસે નવ દરવાજા છે, મન વચન અને કાયા, એના વડે પાપ કરવું કરાવવું ને અનુભવવું. એટલે આપણે નવ રીતે આગળ આવે છે. હવે નવે નવ બારી બંધ કરાય તે પૂર્ણ કહેવાય, પણ ધારો કે નવ બારીમાં બે બારીની ટોપર તૂટી ગયેલી છે તો એનો અર્થ એ છે કે બીજી સાત બારીઓ ખોલી નાખી, કે ભલે બે બારી ખુલી રહી પણ સાત બારીના દરવાજા બંધ કરવા છે, બરાબર ને? તો એ કાર્પેટ નો પ્રશ્ન છે. ઇટ ડઝન્ટ મીન કે આપણે પ્રતિક્રમણ ન કરવું, પણ પ્રતિક્રમણમાં કાર્પેટ ની ઝેરણા કરવી એ તો પહેલું જ છે, પણ એ ઝેરણા કોઈ સંજોગોમાં થાય એમ નથી તો પણ પ્રતિક્રમણ કરો. જો રાજસ મારવાડ વગેરે માં તમે પૂછો ને ભાઈ, તો ઘણી વાર એવું બને છે. એક માતાને આપણી સાથે એમણે એક દીકરી અહીંયા છે, એને નાનું બચ્યું છે, એટલે બાળકને દૂધ તો પાયું જ છે, પણ એ બાળક છે એ ક્યારેક એટલું કદી કરે અને માતા એ કદાચ ફમવર લઈ લીધો હોય, સામાયિક લઈ લીધી હોય, તો એ વખતે એ નથી કરતી હું દુનિયાની કામો નહીં કરું, આરામ સમાજના કામ નહીં કરું. હવે અચાનક બાળકને એવી તકલીફ છે કે બાળકને એ ગોદમાં લઈ શકે જ ના લઈ શકે. પછી જો આપણે હા પડે ને એટલે બધા બાળકને સુવડાવું હોય કે થોડા મને સામાયિક બાજુ બેસી જાય, ચાલો એ બાળક ઉતરી ગયા છે, મારી સામે થઈ ગયા છે. આ પાંચ મારાના જીવ નો વાંધો આ છે. આપણે એમ કીધું હોય ને કે થાળી ખસી જાય તો વાંધો નહીં, એટલે પછી થાળી લઈ અડધું જમી અને હોલમાં જઈ અને સોફા બેસી અને ટીવી જોતા જોતા બાકીનું પૂરું કરશે, કારણ કે એમાં વાંધો નથી થાળી એવી જાય તો. એટલે આપણે કેવું પડે કે આ બધું સ્ટ્રીક્ટલી પાડવું, તો આપણે ઇન્ટેન્સ બીજા શિક્ષક કરતી 24મા તીર્થંકર સુધીના કાળના જીવો એવા હતા. અત્યારે એમ છે ને કે તમારે પેલા નોટ અને નથી શબ્દ વપરાતા એક્સરેસ માટે, તેમ કીધું કે નદી ના ડાન્સ ન જોવે તો આપણે નાચ ના જોઈશું. મને તો નથી નીકળ્યા આવા જીવ છીએ આપણે. એટલે પાંચમારાના જીવના બધા નિયમો આપ્યા છે, પણ વિવેક પૂર્વક અને ગુરુ આજ્ઞાથી જેટલી પણ છૂટ રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ્ટ માં આપી. એક વાર એક માણસ ભાઈ ગુરુ ને પૂછ્યું કે ધર્મ નું કામ કરતા કરતા સંસાર નું કામ કરાય, ગુરુ કે નાશ કરે? તો બીજા પૂછ્યું કે સંસાર ના કામ કરતા કરતા ભગવાન નું નામ લેવાય, તો શું છે ગુરુ? એટલે પેલો માણસ સાંજે લકાર મારવા નીકળો શિબિર મારતો, તો ત્યાં આટા મારતો હતો અને સાથે સાથે સિગરેટ પીતો હતો. તો કે આપણે તો મનાય છે કે સંસારનું કામ એટલે નથી કરવાનું, તો કે તને ગુરુએ ના પાડી મંદા નથી પાડી, કારણ કે તે ગુરુને એમ પૂછ્યું હતું કે સંસારનું શરમનું કામ કરતા કરતા સંસારનું કામ કરાય એટલે તમને ના પાડી. મેં એમ પૂછ્યું હતું કે સંસારનું કામ કરતા કરતા ભગવાનનું નામ લેવાય, એટલે હું ધર્મનું કામ કરતા કરતા નીકળું તો વાંધો છે, પણ હું સંસારનું કામ કરવા નીકળું અને સાથે ભગવાનનું કામ લઈ લઉં તો કઈ વાંધો છે? એટલે આપણે બુદ્ધિ વડે એટલા એક્સક્યુઝ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. એટલે બને ત્યાં સુધી આજ્ઞાને વફાદાર રહેવું, પણ જે આજ્ઞા નથી પાડી શકાય એમાં એની અવેરનેસ આપણને જો આવું સ્થાપનાજીમાં પણ બન્યું છે કે એમ કહેવામાં આવે કે સ્થાપનાજીના સામે નહીં કરવાય, બરાબર ને? હવે તમે કોઈ સંજોગોમાં સ્થાપનાજી ભૂલાઈ જઈ, કોઈ સંજોગોમાં અવેલેબલ જ નથી અને આપણો અંતિમ કાળ આવતો ધારો છે, તે વખતે આપણે એવી ભાવના હોય કે આપણે આશ્રવ બધા છોડીને સંસારા ભાવમાં મળવું છે, સામાયિકના ભાવમાં મળવું છે, તો હવે ત્યારે સ્થાપનાજી નથી એટલે એને પછાણ લેવા કે ન લેવા. આજે જો અશુદ્ધિ હોય તો ધર્મનું નામ સૂત્રો ના ઉચ્ચારાય, આ વાત સાચી છે. પણ એક સ્ત્રી હોય કે જે પ્રેગ્નન્ટ છે અને ડિલિવરી આવી છે, હવે એ વખતે એની ડિલિવરીમાં જ એનો ડેથ થઈ જવાનો નથી, એનો રોગ એવો છે કે જેમાં હવે એને બચાવી શકાય એમ નથી, તો એ સ્ત્રી છેલ્લા શ્વાસ લેશે ત્યાં સુધી એની અશુદ્ધિ ચાલુ રહેવાની છે. હવે એને ધર્મનું કશું સંભળાવે જ ન સંભળાવે. ધર્મ એવી છે ત્યાં કરે કે તારે મરતા સુધી મારું નામ ન લેવું કરે, એટલે આપણે સમજવાની જરૂર છે. કોઈ વસ્તુની કલ્પના કરીએ ને બેન, તો એના નિશ્ચય વ્યવહાર નજરમાં રાખવો, એના રેફરન્સથી કોન્ટેક્ટ કરે. વ્યવહારમાં નોર્મલી આમ ન કરાય, પણ એક્સેપ્શનલી, પણ એક્સેપ્શનલી જે હોય ને એને આપણે નોર્મલી કરી નાખીએ, કે નોર્મલી હોય ને આપણે એક્સેપ્શનલી કરી નાખીએ, આ વાંધો છે. એટલે હું કાંઈ પણ તમને કહું કે જે અર્થમાં કહું છું એ એક જગા એવું બન્યું, કેટલાક લોકો એવા હતા કે રાત્રિ ભોજન હંમેશા કરનારા, તે લોકોએ એમ કીધું કે ભાઈ અમે રાત્રિ ભોજન છોડી જ શકીએ એમ નથી, હવે અમારે પ્રતિક્રમણ કરવું હોય તો અમારે વહેલા આવવું પડે, અને અમે એ ટાઈમે તો જમી નથી લેતા, તો હવે અમારે પ્રતિક્રમણ કરવું જ ના કરવું, તો આપણે એમ શું કહેવું તમારે પ્રતિક્રમણ નહીં કરવાનું. એ રાત્રિ ભોજન તો પ્રતિક્રમણ કરે તોય કરવાના છે અને ન કરે તો કરવાના છે, એને શું કે તમે જ કેવું મંદિર શું કે રાત્રિ ભોજન સાથે આપણે લેવા દેવા, આપણે એનું તો રાત્રિ ભોજન તો કરવું જ છે, હવે મારે પ્રતિક્રમણ કરવું કે આટલો એનો પ્રશ્ન છે. એક માણસ માંસાહારી છે, એ આપણી પાસે આવીને આપણને કહે કે આ માંસાહાર કરે છે એને લઈને કઈ સમજાવો, એટલે આપણે એને કહી કે તું શાકાહારી બની જા. એ શાકાહારી બન્યો એટલે ત્યારે ત્યારે આપણે એમ નહીં કહી શકીએ ને કે તું પણ મૂળ છોડી દે, તું માંસાહાર છો. એટલે માંસાહાર છોડ્યો અને એને કીધું હું શાકાહાર કરીશ, હવે શાકાહારમાં એને કંદમૂળ ઇન્ક્લુડ કર્યું, તો પછી બીજી જગ્યાએ કહીએ બેને એને કંદમૂળ કરવાની હા પાડી, શું કીધું બેને એને કંદમૂળ ખાવાની હા પાડી, બેને એને માંસાહાર ન કરવાનું જ કહ્યું છે. એને શું કહ્યું છે કે તારે માંસાહાર છોડવો જોઈએ. હવે એને કંદમૂળ ખાધું એ તો એને કંદમૂળ પણ ખાતો પણ માંસાહાર પણ કરતો, તેમાંથી આપણે એનું કંદમૂળ ન છોડાવી શક્યા પણ માંસાહાર છોડાવ્યો. એવી રીતે આપણો ઇન્ટેન્શન જે છે એ સમય આપણે ગુરુ ભગવાન તો આપણને ક્યારે પણ આપણને જે ભાષા બોલે ને એની અંદર એ વિવેક રાખે, આપણને સામાયિક બંધાવે પણ સામાયિક પેલી પડાવે નહીં. શું કામ ના પડાવે? જે સામાયિકમાં હોય ને એને બીજાને સામાયિક પડાવાય નહીં, પોતે પાડે ત્યારે પડાવાય, પણ તમે સામાયિકમાં છો અને બીજાને સામાયિક પડાવી એટલે આરંભ સમારંભ મળે લાગે તેની આપણે સામાયિકમાં અનુભૂતના કરી દેવાય. એટલે આ નિયમ છે, પણ આપણો ઇન્ટેન્શન અને પૂછનારનું ઇન્ટેન્શન આપણે ક્લિયર રાખવું જોઈએ. હવે મંત્ર પઢે લીધે પઢે લેકિન અર્થ નહીં માલુમ, ઇસકા ક્યાં પરિણામ હોગા, ક્યોંકી वो भावना नहीं आई तो सुनो आमा पर देवाज से एक पच्चीस प्रश्न ले चुके। अब आ प्रश्न पूरा करिए पच्चीस तुम्हारे प्रश्न अपने मंत्र पढ़िए मंत्र करिए पर अपने नो अर्थ मालूम नहीं तो मंत्र करो कि नहीं अने नो क्यों अर्थ साकर खाइए साकर नो अर्थ खबर न हो तो मीठी लागे कि न लागे शेर खाइए शेर नो परिणाम खबर न हो तो शेर ही मराए कि न मराए मरवा माटे शेर विषे जानव जरूरी नहीं एवी रीते दरेक मंत्र में मंत्र नो अर्थ खबर ज हो એવું અનિવાર્ય નથી પણ જયારે તમારે મંત્ર સિદ્ધ કરવો છે ત્યારે તમે શું સિદ્ધ કરવા માંગો છો આજ તમે કમ્પ્યુટર ચલાવો છો તમારે ઓર્ડર કરવો છે ત્યારે તમે ઓર્ડર કરો અને એમાં તમારે બંગલો લેવો છે ગુજરાતી ભાષામાં અને તમે ખાલી અનુસ્વાર ભૂલી ગયા અને લખ્યું કે મને 10 લાખ નો બંગલો મોકલજો શું લખ્યું બેન બંગલાની જગ્યાએ બંગલો ખાલી અનુસ્વાર ભૂલી ગયા એક અનુસ્વાર લગતા ભૂલી ગયા ને ફોરવર્ડ થઈ ગયું તો પછી 10 લાખ રૂપિયામાં બગલો આવી ગયો બરાબર છે ને એટલે ત્યારે આપણો ઇન્ટેન્શન શું છે હમકો ક્યાં પાચાઈએ હવે મંત્ર છે કુછ પાના હોય કોઈ કાર્ય સિદ્ધ કરના હોય મંત્ર છે સિદ્ધિ કરવી હોય જે દેવતા કો બુલાતે છે કુછ કાર્ય સિદ્ધ મંત્ર છે कुछ परिणाम सिद्ध करते थे उसको पानी से चलना है ये करना है ऐसी सिद्धि के लिए देवता का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें जो मंत्र है वो मंत्र का अर्थ भी समझ के करना चाहिए नहीं तो एक की जगह मम कनक धारा स्त्रोत्र से श्री सुक्त नाम नो लक्ष्मी नो स्त्रोत्र से लक्ष्य मम अलक्ष्मी नाथ या नाथ मारी अलक्ष्मी नो नाथ करो तो अलक्ष्मी एटले दरिद्रता ધન ન હોય મમ લક્ષ્મી સંસ્કૃત માં મમ મ અર્ધો હોય છે એટલે એને ખોરો કહેવાય છે લાઈન હોય હવે એની સાથે સંધિ કરેલી તો મમ લક્ષ્મી એટલું લખ્યું હોય બોલવાનું કેમ હોય મમ અલક્ષ્મી ઉચ્ચાર કરતી વખતે પ્રિય છે કે મારી અલક્ષ્મી ના કહે ના કહે હવે એ તમે ના બોલ્યા ને મમ લક્ષ્મી ના કહે ના કહે બોલી ગયા તો લક્ષ્મી ત્યારે તમારી લક્ષ્મી નો નાશ કરી દીધો કારણ કે આ દેવી ની ઉપાસના છે પણ જયારે આપણે નૌકાર મંત્ર બોલીએ છીએ બાળક જયારે કાલી જેવી ભાષામાં માં પાસે કઈક માગે છે એ વખતે ટોટડી ભાષામાં એ જે માગે એ બાળક નથી સમજતો પણ માં સમજી જાય છે કે આ બાળકને શું જોઈએ છે તે બાળકની માગવાની રીત ઉપર કે માગવાના શબ્દો ઉપર નથી જતી પણ એ બાળકની ચેષ્ટા ઉપર જે સમજે છે કે બાળકને આ જોઈએ છે એવી રીતે બાળ ચેષ્ટા પ્રમાણે આપણે અજ્ઞાનપણે પણ મંત્ર ભણીએ તો એ મંત્ર વડે જે કઈ એનો પુણ્યનો લાભ છે આપણે એ વખતે શુભ ભાવમાં રહ્યા એનો લાભ છે મળે પણ જયારે પર્ટિક્યુલર સાધના કે ઉપાસના કરતા હોય તો મંત્ર નો અર્થ જાણ્યા વિના મંત્ર કરીએ તો આપણને એનો લાભ ન મળે એટલે જેનો અર્થ ખબર નથી એનો અર્થ આપણે આજ્ઞા વડે જ માની લીધો છે એમ કહેવામાં આવે કે આ કરવાથી તને આટલું ફળ મળે તો કા આપણે જાણતા હોવા જરૂરી છે ને કા જાણકારે કીધું એમાં આપણો વિશ્વાસ જરૂરી છે એટલે આપણે મંત્ર ન જાણતા હોય તો મંત્રના રચયિતા કે મંત્રના ઉદ્ગાતા કે મંત્ર દેનારા એની ઓથેન્ટિસિટી સાથે આપણે કરવાની તો આપણને નુકસાન નથી ઉપવાસ ક્રિયા કર્મે દર્દે ઠીક નહીં હોવા આખી રાત 1 બજે સરદર્દની ગોળી નીકળવી ક્યાં પરિણામ હોય इसी वजह से बच्चा नहीं लिए थे तो उसके मन में पक्का था कि मेरा सर दुखेगा शायद तो मैं उसको पाल सकता हूँ इसलिए बच्चा नहीं लिया यही वजह है तो उसने कोई बुरा नहीं है तो उसने देखा कि भाई मेरे से अगर न बन पाएगा मैं ट्राई करूँ कि दोपहर तक मेरा सर नहीं पकड़ा तो मैं प्रत्याख्यान कर लू तो जब तक नहीं खाया तब तक न खाने का फल मिलेगा लेकिन जैसे ही प्रत्याख्यान ले लिया तो पूरे अन्य जीवों को अभिज्ञान देने का फल मिलेगा तो इसमें उसकी कोई स्थिति नहीं कि भाई मेरे मन में दूसरा है वो मैं कर दू दूसरा तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं कि बेटा तू दोपहर तक दे अगर तेरे से बन पाया तो हम आपको प्रत्या लेकिन अगर मन में संभावना है कि आज मेरा एकाग्रता है आज मेरा उपवास है जो भी है तो हम सुबह से ही उसका प्रत्याख्यान कर ले पे फिक्स डिपॉजिट हो जाती है, सेविंग में अकाउंट रहेगा तो ब्याज कम मिलेगा और फिक्स डिपॉजिट हो गई तो ब्याज ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से हमारे भाव को फिक्स डिपॉजिट कर देना ताकि विकल्प को बंद हो जाए। एक बार प्रत्याख्यान नहीं है तो सर दुख भी गया, सर पकड़ा भी गया, तो भी हम सहन करने के लिए अपने टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें प्रत्याख्यान आ गया है। लाख में एक बार ऐसा बनता है कि कोई पठान तोड़ दे तो वो अपवाद मार्ग कहा जाता है, एक्सेप्शन कहा जाता है। उसके डर से प्रत्याख्यान नहीं लेना, ऐसी परोपना नहीं की जा सकती। दवाई खाई तो उसका उपवास गया नहीं, पहले बताया ना भाई कि आप उसको उपवास नाम मत दो। अगर उपवास में दवाई खाने की बात आ गई ना तो एक लोग उपवास के समय दवाई का आदर रख के, कई दवाई ऐसी होती है भूखे पेट में दी जाती तो उसके साथ लिया हुआ पदार्थ भी दवाई ही गिना जाएगा, तो लोग क्या करेंगे कि पहले दूध पी लो बाद में दवाई खा रहे हैं, तो उसको पार्ट ऑफ मेडिसिन जिनके लोग शुरू कर लेंगे। तो आपको अगर खुला रखना है तो आप उसको धारणा प्रस्थान के रूप में लो कि आज का पूरा दिन मैं तीनों आहार का त्याग करता हूँ, अगर मुझे दवाई लेनी पड़े तो मैं दवाई का आधार रखता हूँ, लेकिन उपवास शब्द से गड़बड़ हो सकती है। माला दिखते समय पाठ करते समय कम समय में समाप्त करने के लिए मन ने बहुत तेज मनन किया, इससे बहुत सारी गलतियाँ प्रथम मंत्र से आखिरी मंत्र पर हुआ, इसका क्या परिणाम होगा? देखो अगर कितना सही गया उसका सही फल मिलेगा, कितनी गड़बड़ हुई उसका गड़बड़ होगा, लेकिन उससे पूरी माला आपने 50 तक बराबर से गिना और 50 के बाद तेज हो गई, ऐसे भी तो देखो ना। तो समय लेते वक्त भाई ने आराम से समय लेते हो, लेकिन पालते वक्त उसने तो पता है कि 48 मिनट तेज नहीं है, कभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तो समय बांधने में आराम से लेते हो, लेकिन पालते वक्त स्पीड आ जाती है, संसार के काम में जुट जाना है। तो एक चीज है कि आप जब कुछ चीज बनाते हो तो 10 ड्रॉइंग में आगे वाले 10 ठीक हुए और बाद में आपने स्पीड कर ली तो वो ड्रॉइंग भी कर गई, तो लेकिन उसने पूरी चीज को हानि या फायदा होने वाली बात कम है, ज्यादा बात यही कि जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान हुआ और जितना फायदा हुआ वो जितना धीरज से, जितना मनन से, जितना मंत्र शक्ति से बोला उसका फायदा पूरा मिलेगा, इसके बाद का फायदा कम हो जाएगा। उसमें मन में तेज आ जाता है कि अभी मेरी आधी घंटा निकल गया, अभी मुझे तो 3 माला पकड़ने बाकी है तो अभी जल्दी से करो, तो वो हो सकता है कि उसने आपका नाम का विचार है उसे वो दोहराया गया है, चमवादम बच्चा मेरिया फरम बच्चा फरम, तो उसने तेज गति से बोलना, गुनगुनाट से बोलना, ये सब उसके ज्ञान के दोष है, तो वो दोष लगेगा। लेकिन आपका माला करने का जो भाव है उसमें भाव में क्षति होगी, लेकिन भाव चला गया ऐसा नहीं कहा जाएगा। आपका माला का उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि भगवान का संसार का काम करते करते माला कर सकते हैं, ऐसा करते हैं आपको चलते चलते माला ना करोगे और क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हो ना, तो उसमें कोई बुरा नहीं है कि आप चलते चलते भी भगवान का नाम लो, लेकिन माला ये कोई खेल नहीं है। अगर आप समझते हो तो वैसा समझ के जब देखो तो शुरू से लेकर आखिर तक आप उसमें मन शरीर और वचन सब लगा दोगे और चलते घूमते करते हो तो जैसे हम खेलते करते है ऐसा लगेगा, लेकिन चलते चलते भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माला का समय भी निकल गया तो सुबह चलने को जाऊं और रास्ते में माला भी कर लू, कई लोग ऐसा करते हैं, वो अपने चले थे सुनो देखो भाई हर चीज में 3 चीज लगाओ, गुड डेटर है। तो ये जो नहीं करता है कुछ भी उसके हिसाब से ये अच्छा है, और जो अच्छे से करता है उसके हिसाब से ये कम है। बीच में तो है, करता तो है, लेकिन जो एक जगह देश के ज्ञान से अनुष्ठान लेके करता है वो बेस्ट है, लेकिन एक तो न ध्यान से भी करता है न बिल्कुल करता है, तो उनसे तो कुछ बढ़िया है। आपका इंटेंशन क्या है वो क्लियर रखे। हम धर्म की चिंता करते उसको धर्म करते हुए बंद कर देते, क्या करते हैं भाई ऐसा। आप एक तो पहली बात ये बहुत शांति से सुनना, हम जब धर्म करते हैं तो हमारा ज्ञान लोग कैसे धर्म करते हैं उसके ऊपर जाता है। प्रश्न हमेशा अपने लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं कैसे करूँ और क्या करते हैं वो हमारा लक्ष्य नहीं। कभी एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति सामाजिक में चित्र लेखा पढ़ रहा था और उसने आके पूछा, दूसरे ने पूछा कि क्या सामाजिक में चित्र लेखा पढ़ सकते हैं, तो हमारा जवाब था वो पढ़ सकता है तू नहीं पढ़ सकता है। क्यों, उसको पता नहीं है, नहीं उसको पता नहीं है, उसको पता है कि नहीं पढ़ना। तेरा प्रश्न इसलिए कि तुझे पता है कि चित्र लेखा नहीं पढ़ सकते, तो तेरा प्रश्न स्वकेंद्रित नहीं है, स्वलक्षी नहीं है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि मेरी साधना में मैं कैसे आगे बढ़ू, और क्या करता है उसको थोड़ा गौण करता हूँ, उसको मुख्यता भक्त हूँ। उसको किसी ने बताया था कि पहली बार या दूसरी बार समय करता है, किसी ने बताया हो कि भाई समय में अच्छा कुछ पढ़ना चाहिए जो वैभव विलास का न हो, मोहदशा का न हो, श्रृंगार का न हो। और उसने पहले जो प्रभात का पुष्प करके एक आर्टिकल आता था तो उसमें अच्छी बातें आती थी, वो सुबह सुबह पढ़ो तो उसमें कुछ सुविचार जैसा आता था। तो दो तीन दिन से उससे पढ़ा नहीं गया था, तो देखा कि आज समय करने वाला हूँ, तो सब मेरा जो रोज का नियम छूट गया है कि प्रभात का पुष्प रोज पढ़ लेना, तो आज मैं उसने पढ़ लू। तो वो तो अनजाने में वो लेके बैठा था, लेकिन जो पूछने वाला था उसको पक्का पता था कि सामायिक में क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उससे प्रश्न में करवाहट थी, क्या था करवाहट थी। तो हमारा मन करवाहट वाला नहीं चाहिए, कोई भी चीज धर्म की बताओ हर समय वो सब बोलेंगे, तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो तेरा प्रश्न ही नहीं है। लोग ऐसा करता है वो लोग का प्रश्न है, तू समझ ले कि नहीं करना चाहिए मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न हमेशा ऐसे सुनो रखो कि मेरे आत्मा का सुधार कैसे हो, नहीं तो लोग समय छोड़ देंगे, चित्र लेखा नहीं छोड़ेंगे। तो बोले कि धर्म करता है और साथ में तेरा क्या कहता देंगे, पाठ ना पाया पकड़े से नाम तो झूठू बोले, तो ये पाठ न पाए थोड़ी देते झूठू नहीं चाहिए। तो इस तरह से अब टाइम सही है, चलो ऐसे प्रश्न यहाँ समाप्त करते क्योंकि आलोचना का समय अपने चार बजे तक भी सकते हैं।
तो चार से पाँच आलोचना होगा,
हाँ तो पाँच दस दिन इतना कमारो चले पानी हो जो देर टाइम हो ये करो, क्या अपना आज प्रश्न यहाँ पूरा कर लेते जो आप प्रश्न सुनो। ये प्रश्न मेरा आखिरी नहीं है, इससे भी बढ़कर ज्ञान है और कोई इससे भी ज्यादा प्रकाश दे सकता है। जहाँ तक मेरी धारणा में है कितना मैंने जाना है, मेरी मर्यादा के अनुरूप मेरे ज्ञान से मैंने जितना भी आपको बताया उसमें भी ज्ञानी के ज्ञान से कम अधिक या विपरीत कोई मुझसे कहा गया हो और प्रश्न पूछने वाले को मैं कभी नीचा नहीं गिनती हूँ। लेकिन समय ऐसा होता है कि उसको कभी वहाँ का वहाँ रोकना पड़ता है, तो इस हिसाब से मेरे उत्तर से किसी को कुछ भी मन दुख हुआ हो या तो कुछ समझ में न आया हो ये मेरी क्षति है। तो मेरी ओर से कुछ ऐसे ज्ञान की मर्यादा के साथ कुछ कहा गया हो तो ज्ञानियों के ज्ञान से कम अधिक या विपरीत रूपना के लिए अनंत केवली प्रवृत्ति धर्म और आप तक संत की साक्षी से तस्मित जानू।
આઈલોના નો પ્રોગ્રામ સવા ચાર પંદર મિનિટ થઈને કરે છે, અડધો કલાક સાડા ચાર થી સાડા પાંચ, આપડે સાડા ચાર થી સાડા પાંચ લઈએ અથવા તો પંદર મિનિટ પછી લેતી કે ઓછું સવા ચાર ફોર ફિફ્ટી ટુ ફાઈવ થર્ટી ઓકે તો નેક્સ્ટ સેશન વિલ સ્ટાર્ટ ફોર ફિફ્ટી Thank you.